नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप दादू याजो से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने पीएनजी की उपयोगकर्ताओं को घरेलू एलपीजी कनेक्शन छोड़ने का आदेश दिया है। दो भारतीय जहाज 92,000 मैट्रिक टन से अधिक एलपीजी लेकर हॉर्मुज जल मरु मध्यम पार कर चुके हैं। इनके अगले हफ्ते की शुरुआत में गुजरात बंदरगाह पहुंचने की उम्मीद है। अरुणाचल फैशन वीक 2026 का शुभारंभ शनिवार को इंटीरियर पार्क नाहरलगुन में स्वदेशी वस्त्रों और समकालीन डिजाइनों की शानदार प्रदर्शनी के साथ हुआ। ये आयोजन 21 मार्च तक चलेगा, जिसमें डिजाइनर, कारीगर सहयोग और सार्वजनिक प्रदर्शनियां शामिल होंगी। बीएआईसी प्रदर्शनी एवं कार्यक्रम संगठन बीएआईसी कनेक्ट ईटानगर का आयोजन कर रहा है, जो एक ज्ञान साझाकरण और नेटवर्किंग मंच है, जिसमें वास्तुकार, इंजीनियर, सरकारी अधिकारी, बिल्डर और उद्योग जगत के नेता अरुणाचल प्रदेश में अवसंरचना विकास के भविष्य पर चर्चा करने के लिए एक साथ जाते हैं। अरुणाचल प्रदेश नेटबॉल एसोसिएशन द्वारा ईटानगर में 19 मार्च तक एक विशेष कोचिंग शिविर चल रहा है। बीसीसीआई आज नई दिल्ली में आयोजित होने वाले प्रतिष्ठित नमन पुरस्कार 2026 में भारतीय क्रिकेट सितारों और योगदानकर्ताओं की उपलब्धियों का जश्न मनाएगा। ईरान के साथ तनाव के बीच अमरीका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अन्य देशों से हॉर्मुज जल मरुमध्य के सुरक्षा के लिए जहाज भेजने का आग्रह किया है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास आराची ने कहा कि हॉर्मुज जल मरुमध्य खुला है, लेकिन उन्होंने अमरीका और इसराइल से जुड़े जहाजों पर प्रतिबंध लगा दिया है। श्रीलंका के ईंधन आपूर्ति संकट के मद्देनजर सभी वाहनों के लिए QR कोड पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है। भारत ने क्वालिफायर में इंग्लैंड से 0-2 से हारने के बावजूद FIH महिला हॉकी विश्व कप के लिए क्वालिफाई कर लिया है। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने पाइप वाली प्राकृतिक गैस पीएनजी और द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस एलपीजी दोनों के कनेक्शन वाले परिवारों को तत्काल प्रभाव से अपना एलपीजी कनेक्शन सरेंडर करने का निर्देश दिया है। तेल विपणन कंपनियों को भी निर्देश दिया गया है कि उन उपभोक्ताओं को नई एलपीजी कनेक्शन जारी न करें या रिफिल न दें जिनके पास पहले से ही पाइप वाली प्राकृतिक गैस की सुविधा है। सरकार ने कहा कि ये कदम खाना पकाने की गैस की आपूर्ति में दोहराव को रोकने और ये सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। जिन परिवारों के पास पीएनजी नेटवर्क की सुविधा नहीं है, उनके लिए एलपीजी सिलेंडर उपलब्ध रहे। ये अधिसूचना पश्चिम एशियाई में चल रहे संकट के कारण वैश्विक ईंधन आपूर्ति में व्यवधान के बीच आई है। इस बीच भारत के राजनयिक प्रयासों के बाद ईरान ने भारतीय ध्वज वाले दो एलपीजी वाहकों को हॉर्मुज जल मरु मध्य के से गुजरने की अनुमति दे दी है। इस बीच कल अंतर मंत्रालय मीडिया ब्रीफिंग में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने नागरिकों से एलपीजी सिलेंडरों की जल्दबाजी में बुकिंग न करने और केवल आवश्यकता पड़ने पर ही बुकिंग करने का आग्रह किया। अरुणाचल फैशन वीक 2026 का शुभारंभ शनिवार को इंटीरियर पार्क नाहरलगुन में स्वदेशी वस्त्रों और समकालीन डिजाइनों के जीवन प्रदर्शन के साथ हुआ। 8 दिवसीय इस कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने स्थानीय कलाकारों और कारीगरों को संस्थागत सहायता प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय के अंतर्गत एक रचनात्मक अर्थव्यवस्था प्रकोष्ठ की स्थापना की घोषणा की। इस नई प्रकोष्ठ का उद्देश्य अरुणाचल प्रदेश की शिल्प कला को वैश्विक स्तर पर प्रदर्शित करने के लिए एक समर्पित मंच प्रदान करना है। नाइट ऑफ ओपोलिस के उद्घाटन समारोह में पारंपरिक आदिवासी बुनाई और आधुनिक परिधनों का संगम देखने को मिला। ये कार्यक्रम 21 मार्च तक चलेगा, जिनमें डिजाइनर, कारीगर सहयोग और सार्वजनिक प्रदर्शनियां शामिल होंगी। बीएआईसी प्रदर्शनी एवं कार्यक्रम ने बीएआईसी कनेक्ट ईटानगर का सफलतापूर्वक आयोजन किया, जो एक ज्ञान साझाकरण और नेटवर्किंग मंच है, जिसमें वास्तुकारों, इंजीनियरों, सरकारी अधिकारियों, बिल्डरों और उद्योग जगत के नेताओं को राज्य में वास्तुकला, शहरी नियोजन और अवसंरचना विकास के भविष्य पर चर्चा करने के लिए एक साथ लाया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन अरुणाचल प्रदेश आर्किटेक्ट्स एसोसिएशन के सहयोग से किया गया था। बीएआईसी कनेक्ट ईटानगर में क्षेत्र के विकास से संबंधित प्रमुख विषयों पर केंद्रित कई ज्ञानवर्धक तकनीकी सत्र आयोजित किए गए। बीएआईसी कनेक्ट ईटानगर की सफलता ने अरुणाचल प्रदेश के पेशेवर और सरकारी समुदाय की एक स्थायी, लचीले और भविष्य के लिए तैयार निर्मित वातावरण के निर्माण के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता को उजागर किया है। अरुणाचल प्रदेश नेटबॉल एसोसिएशन द्वारा आयोजित एक विशेष कोचिंग शिविर 19 मार्च तक ईटानगर के नेटबॉल ग्राउंड में चल रहा है। कोच विनोद कुमार कानू और सहायक कोच विश्वजीत बोड़ा ने के नेतृत्व में ये शिविर खिलाड़ियों को उत्तर प्रदेश में होने वाली आगामी दूसरी सीनियर राष्ट्रीय मिश्रित नेटबॉल और चौथी फास्ट फाइव जूनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप के लिए तैयार कर रहा है। एसोसिएशन के महासचिव तेची तोंगम ने राष्ट्रीय स्तर के लिए राज्य की प्रतिभाओं को निखरने में शिविर की भूमिका पर जोर दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार ने पिछले 10 वर्षों में असम पूर्वोत्तर क्षेत्र का एक प्रमुख स्वास्थ्य केंद्र बन गया है, जिससे निवासियों को इलाज के लिए क्षेत्र से बाहर यात्रा करने की आवश्यकता कम हो गई है। गृह मंत्री ने कहा कि असम भारत का पहला राज्य है जिसने सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में प्रोटोन थेरेपी मशीन शुरू की है और विश्वस्तरीय कैंसर उपचार सुविधाएं स्थापित की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज गुवाहाटी में 90 करोड़ रूपये से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। नेपाल में कल शाम गोरखा जिले में एक माइक्रोबस दुर्घटना में 7 भारतीय तीर्थयात्रियों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। पुलिस के अनुसार इलेक्ट्रिक माइक्रोबस में 16 लोग सवार थे, जिनमें 14 भारतीय तीर्थयात्री शामिल थे और मनकामना मंदिर से लौट रहे थे। ये माइक्रोबस शहीद लखन ग्रामीण नगर पालिका के कांतर में सड़क को उतर गई। बताया जाता है कि वाहन लगभग 200 मीटर नीचे पहाड़ी से गिर गया। उत्तर प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के प्रश्न पत्र से संबंधित मामले पर कड़ा संज्ञान लेते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के सभी भर्ती बोर्ड अधीक्षकों को निर्देश दिया है कि वे ये सुनिश्चित करें कि किसी भी व्यक्ति, जाति, संप्रदाय या धार्मिक समुदाय की गरिमा और मान्यताओं के प्रति कोई भी अपमानजनक या निंदीय टिप्पणी न की जाए। ईरान द्वारा संयुक्त अरब अमीरात पर अपने क्षेत्र को ईरानी ठिकानों पर मिसाइल हमलों के लिए इस्तेमाल करने की अनुमति देने का आरोप लगाने के बाद खाड़ी क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। ईरानी विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरगची ने आरोप लगाया है कि खर्क द्वीप और अबू मूसा पर हुए हमले रास अल खेमा और दुबई के पास तैनात हिरमस रॉकेट प्रणालियों से किए गए थे। ये आरोप ऐसे समय में आया है जब ईरान और संयुक्त राज्य अमेरिका इसराइल गठबंधन के बीच टकराव लगातार बढ़ रहा है, जिससे खाड़ी क्षेत्र में और अधिक अस्थिरता की आशंका बढ़ गई है। यूएई सरकार ने इन आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। राष्ट्रपति के सलाहकार अनवर गर्गेश ने जोर देकर कहा कि यूएई संवाद और कूटनीति के लिए प्रतिबद्ध है। आज बारामूला जिले के उरी सेक्टर में भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस के संयुक्त अभियान के दौरान एक पाकिस्तानी आतंकवाद मारा गया। सेना ने बताया कि 14 और 15 मार्च के दरमियानी रात को बुच्छार इलाके में नियंत्रण रेखा के पास घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया गया। अंतिम सूचना तक अभियान जारी था। ईटानगर मौसम विज्ञान केंद्र द्वारा अरुणाचल प्रदेश के तवांग, कुरुंगमे, क्रादादी, अपर सुबनसिरी, श्रीयोमी और अपर सियांग जिलों को छोड़कर सभी जिलों के लिए पूर्वानुमान जारी किया है कि छिटपुट स्थानों पर बिजली गिरने के साथ गरज और भारी बारिश की बहुत संभावना है। निर्वाचन आयोग आज शाम 4 बजे और राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव की तारीख की घोषणा कर ली गई है। इन प्रदेशों में आसाम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी शामिल है। पश्चिम बंगाल के 294 सदस्यीय विधानसभा का सत्र 7 मई को, 126 सदस्यीय असम विधानसभा का सत्र 20 मई को और 140 सदस्यीय केरल विधानसभा का सत्र 23 मई को समाप्त होगी। वहीं 334 सदस्यीय तमिलनाडु विधानसभा का सत्र 10 मई और 30 सदस्यीय पुडुचेरी विधानसभा का सत्र 15 जून को समाप्त होगा। निर्वाचन आयोग ने कलकत्ता पुलिस आयुक्त से कल गिरीश पार्क में भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच हुई झड़प के दौरान केंद्रीय बल के इस्तेमाल न किए जाने के संबंध में रिपोर्ट मांगी है। यह झड़प तब हुई जब भाजपा समर्थक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होने वाली रैली में शामिल होने के लिए जा रहे थे। इस झड़प में 8 पुलिसकर्मी और दोनों पक्षों के कई समर्थक घायल हो गए। भाजपा के उत्तर कोलकाता जिला अध्यक्ष तमोकन घोष को अस्पताल में भर्ती कराया गया। कोलकाता पुलिस ने स्वतः संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज किया है। राज्य पुलिस ने बताया कि अब तक 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें 12 नगर के 3 भाजपा कार्यकर्ता शामिल हैं। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।